नमस्कार
नमस्कार।
सोचिए आपकी जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने की एक रोजाना जंग हो और उस जंग में आप एक ऐसा तीर चला दें जो आपकी पूरी दुनिया ही बदल दें।
सब कुछ पलट कर रख दे।
हाँ बिल्कुल, आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतर रहे हैं, सारा जे मास का मशहूर उपन्यास ए कोट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेज।
और ये कोई मतलब आम परिकथा नहीं है, सारा जे मास को आज की रोमांटिसी शैली की सबसे बड़ी आवाजों में से एक माना जाता है।
रोमांटिसी यानी रोमांस और हाई फैंटेसी का संगम।
हाँ, जहाँ दाव पर सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि दिल भी लगे होते हैं।
बिल्कुल, तो ये कहानी असल में ब्यूटी एंड द बीस्ट का एक कह सकते हैं कि एक डार्क और मॉडर्न टेक है।
नीव तो वही है, एक लड़की, एक श्रापित राजकुमार।
लेकिन सारा जे मास ने इसे कहीं ज्यादा खतरनाक, जादुई और जुनून से भरा बना दिया है।
ये कहानी है इंसानों और परियों यानी फे की दो दुनियाओं की,
जिन्हें एक जादुई दीवार सदियों से अलग करती आई है। तो चलिए आज इस दीवार के पार चलते हैं।
कहानी हमें मिलाती है 19 साल की फियोरा आर्चन से।
और वो कोई राजकुमारी तो है नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक शिकारी है। उसके कंधों पर अपने गरीब पिता और दो बहनों का पेट पालने का बोझ है।
मतलब उसकी जिंदगी कांटों से भरी है, ठंड, भूख, निराशा।
और इसी संघर्ष में वो एक ऐसा कदम उठाती है जो अनजाने में एक सदियों पुरानी संधि को तोड़ देता है।
हाँ, वो भेड़िए वाली घटना।
बिल्कुल, कड़ाके की ठंड का मौसम है, परिवार भूख से मर रहा है और फियोरा जंगल में एक विशाल भेड़िए का शिकार कर लेती है।
वो तो बस ये सोच रही होगी कि इसकी खाल बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे।
उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो भेड़िया असल में एक फे था जो अपना रूप बदल सकता था।
और फैंटेसी की दुनिया में ऐसे कर्मों का हिसाब तो होता ही है। तो ये प्राचीन संधि क्या थी जिसका उल्लंघन हुआ?
संधि थी एक जान के बदले एक जान।
अच्छा।
कुछ हफ्तों बाद एक रात फेरा के घर का दरवाजा टूटता है और एक भयानक जानवर जैसा प्राणी अंदर आता है।
ये है टैमलिन।
हाँ, स्प्रिंग कोर्ट का हाई लॉर्ड टैमलिन।
एक मिनट, तो ये कोर्ट्स क्या हैं? प्रिथियन में सत्ता का ढांचा कैसा है, जैसे अलग अलग राज्य होते हैं?
बिल्कुल सही समझे, प्रिथियन 7 कोर्ट्स में बटा हुआ है, 4 मौसमी और 3 सौर, और हर कोर्ट का अपना एक शासक है, एक हाई लॉर्ड,
जो अपने क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली फे होता है।
हाँ। तो टैमलिन जो स्प्रिंग कोर्ट का लॉर्ड है, वो फेरा को दो रास्ते देता है,
या तो वो मारी जाए
या अपनी बाकी की जिंदगी प्रिथियन में बिताए।
और अपने परिवार को बचाने के लिए वो एक और त्याग करती है।
हाँ, वो दूसरा रास्ता चुनती है। वो उस दुनिया में जाने को तैयार हो जाती है जिससे इंसान सदियों से डरते और नफरत करते आए हैं।
और जब वो पृथ्वीयन पहुंचती है
तो सब कुछ उसकी उम्मीद के खिलाफ होता है।
बिल्कुल, वो सोच रही थी कि उसे किसी काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे एक खूबसूरत महल में रखा जाता है।
हाँ, टैमलिन का महल, उसके बाग, सब कुछ सपनों जैसा है।
और उसके साथ कैदी जैसा नहीं बल्कि एक मेहमान जैसा बर्ताव होता है।
लेकिन इस खूबसूरती पर एक पर्दा है ना, एक रहस्य का।
वो पर्दा है, वो नकाब। टैमलिन और उसके दरबार के सभी लोग हर वक्त नकाब पहने रहते हैं।
और ये कोई शौक नहीं है, वो इन नकाबों को उतार ही नहीं सकते।
बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, पूरे पृथ्वीयन पे 50 सालों से एक रहस्यमयी ब्लाइट, मतलब एक जादुई महामारी का साया है,
जो धीरे धीरे फे की शक्तियों को सोख रही है
और उनकी जमीन को बंजर बना रही है। स्प्रिंग कोर्ट की खूबसूरती बस एक भ्रम है जिसके नीचे सब कुछ मुरझा रहा है।
तो यहाँ हमें कहानी का एक बड़ा थीम मिलता है, दिखावे का धोखा।
जो दिख रहा है वो सच नहीं है। एक खूबसूरत महल असल में एक सोने का पिंजरा है।
और शुरुआत में तो फेरा का एक ही मकसद होता है, यहाँ से भागना।
लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती हैं।
हाँ, टैमलिन जो बाहर से कठोर दिखता है वो उसे चित्रकारी का सामान लाकर देता है।
और सालों बाद जब फेरा ब्रश उठाती है
तो जैसे उसकी सोई हुई आत्मा जाग जाती है।
और लूसियन भी है, टैमलिन का दूत।
हाँ, लूसियन के साथ उसकी तीखी नोकझोंक में उसे एक दोस्त नजर आने लगता है।
तो यही पूर्वाग्रह की जो दीवारें हैं वो टूटने लगती हैं।
बिल्कुल, जिस फे प्रजाति से उसे नफरत करना सिखाया गया था वो उसे अब अलग अलग किरदारों में नजर आ रहे हैं।
अज्ञानता से पैदा हुई नफरत व्यक्तिगत अनुभव से पिघलने लगती है।
और इसी पिघलती बर्फ के बीच फेरा और टैमलिन वो करीब आने लगते हैं,
प्यार पनपने लगता है।
हाँ, लेकिन जैसे ही ये गुलाब खिलने लगता है खतरे के कांटे और नुकीले हो जाते हैं।
और कहानी में एंट्री होती है एक नए खौफनाक किरदार की,
नाइट कोर्ट का हाई लॉर्ड राइसैंड।
अच्छा, तो अब एक नया विलन आ गया, या फिर यहाँ भी कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा?
राइसैंड पहली नजर में एक पक्का खलनायक लगता है, वो क्रूर है, ताकतवर है और उसके इरादे नेक नहीं लगते।
वो टैमलिन का दुश्मन है?
हाँ, और वो फेरा में खास दिलचस्पी दिखाता है। उसके आने से कहानी का तनाव और बढ़ जाता है
और फेरा को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि ये ब्लाइट कोई प्राकृतिक महामारी नहीं है।
हाँ, ये एक श्राप है।
ये सब बहुत रहस्यमयी है। फेरा को जरूर लग रहा होगा कि उसे आधी अधूरी कहानी बताई जा रही है।
बिल्कुल, और सच उससे कहीं ज्यादा भयावह है। ये श्राप लगाया है एमेरेंथा ने, एक अत्याचारी परी रानी जिसने 50 साल पहले पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था।
और सभी हाईलॉर्ड्स की शक्तियां छीन ली थी।
हाँ, वो इंसानों से नफरत करती है और उसने टैमलिन को एक शर्त दी थी।
और वो शर्त क्या थी?
शर्त ये थी कि अगर टैमलिन 49 सालों के अंदर एक ऐसी इंसानी लड़की को अपने प्यार में नहीं डाल पाया जो फे से नफरत करती हो,
तो उसे हमेशा के लिए एमरेंथा का गुलाम बनना पड़ेगा।
हार करना था।
ये जानकर तो फेरा का दिल टूट गया होगा। उसे लगा होगा कि मतलब ये सब एक नाटक था।
उसे लगा कि उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया,
कि टैमलिन का प्यार सिर्फ आजादी पाने का एक जरिया था।
बिल्कुल, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, टैमलिन एक बहुत क्रूर कदम उठाता है
उसे बचाने के लिए।
हाँ, उसे एमेरेंथा के गुस्से से बचाने के लिए वो उस पे चिल्लाता है, उसे डराता है और जबरदस्ती इंसानी दुनिया में वापस भेज देता है।
वो ये नाटक करता है कि वो शर्त हार गया है।
और फेरा जैसी लड़की के लिए प्यार के बिना एक सुरक्षित जीवन शायद कैद से भी बदतर था। जरूरी है उनके साथ खड़े रहना जिनसे वो प्यार करती है।
तो वो प्रिंथियन लौटती है।
हाँ, और उसे पता चलता है कि टैमलिन और उसके पूरे दरबार को एमेरेंथा ने पर्वत के नीचे अपनी खौफनाक कालकोठरी में कैद कर लिया है।
और यही फेरा का असली ट्रांसफॉर्मेशन, उसका रूपांतरण शुरू होता है।
हाँ, अब वो शिकार नहीं बल्कि शिकारी से लड़ने वाली योद्धा बनती है।
वो पर्वत के नीचे पहुंचती है
और टैमलिन की आजादी के लिए खुद को एमेरेंथा को सौंप देती है। एमेरेंथा उसे एक सौदा देती है।
3 भयानक परीक्षाएं।
या तो वो 3 परीक्षाएं पूरी करे या फिर उसकी एक पहेली सुलझा ले।
और इन परीक्षाओं के दौरान ही राइसेंड का किरदार और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है ना?
बहुत ज्यादा। वो सिर्फ दर्शक नहीं बना रहता, वो फेरा की मदद करता है,
लेकिन एक कीमत पर।
हाँ, वो एक सौदा करता है कि अगर वो उसे बचाएगा तो फेरा को हर महीने 1 हफ्ता उसके साथ नाइट कोर्ट में बिताना होगा।
राइसेंड का हर कदम क्रूर लगता है, पर वो अनजाने में फेरा को मजबूत बना रहा होता है।
वो उसे सिखाता है कि कैसे अपनी इंसानी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना है।
ये दिखावे की भ्रामकता का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। जो सबसे बुरा दिखता है शायद वही सबसे बड़ा हितैषी हो। राइसेंड उसे चुनौती देता है जबकि टैमलिन उसे एक पिंजरे में रखना चाहता था।
और फेरा अपनी हिम्मत और राइसेंड की छिपी हुई मदद से 2 परीक्षाएं तो पार कर लेती है,
लेकिन तीसरी में एमरेंथा धोखा देती है।
हाँ, अब सिर्फ पहेली का रास्ता बचता है। एमरेंथा उसे बुरी तरह तड़पाती है, लेकिन अपनी आखिरी सांस लेते हुए फेरा उस पहेली को सुलझा देती है।
और जवाब होता है
प्यार।
दिल तोड़ने वाला पल है। उसने सबको आजाद कर दिया लेकिन खुद नहीं बच पाई।
हाँ, श्राप टूट जाता है, लेकिन एमरेंथा गुस्से में फेरा की गर्दन तोड़ देती है, वो मर जाती है।
पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
श्राप टूटते ही टैमलिन और बाकी हाईलॉर्ड्स को अपनी पूरी शक्ति वापस मिल जाती है और टैमलिन एमरेंथा को मार डालता है।
पृथ्वी आजाद हो जाता है, एक ऐसी आजादी जिसकी कीमत एक इंसानी लड़की की जान से चुकाई गई। पर कहानियां खत्म नहीं होती।
नहीं, फैंटेसी में मृत्यु अक्सर एक नया दरवाजा खोलती है,
और यहाँ भी वही होता है।
हाँ, एक अभूतपूर्व जादुई पल में पृथ्वी के सभी 7 हाईलॉर्ड्स, जिनमें टैमलिन और राइसेंड भी शामिल हैं, एक साथ आते हैं
और अपनी जीवन शक्ति का एक एक अंश फेरा को देते हैं,
और उसका पुनर्जन्म होता है।
वो अब इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली हाई फे बन चुकी है।
ये एक जबरदस्त विरोधाभास है।
हाँ, वो अब सिर्फ एक उत्तरजीवी नहीं बल्कि एक अमर प्राणी है,
एक ऐसी हस्ती जिसने प्यार और आजादी के लिए मौत को भी हरा दिया। वो हमेशा के लिए बदल चुकी है,
और यही बदलाव आगे की कहानियों की नींव रखता है।
बिल्कुल।
तो इस पूरे सफर के जो मुख्य संदेश हैं वो क्या हैं? सबसे पहला और स्पष्ट तो यही है कि प्रेम एक मुक्तिदायक शक्ति है।
हाँ, जो 50 साल पुराने शाप को तोड़ सकती है, और ये भी दिखाती है कि सच्चा प्यार और अधिकार जमाने वाले प्यार में क्या अंतर है।
टैमलिन का प्यार रक्षा के नाम पर नियंत्रण बन जाता है,
जबकि राइसेन के कार्य, जो क्रूर लगते हैं, असल में फेरा की अपनी क्षमता का सम्मान करते हैं।
बिल्कुल। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है त्याग।
हाँ, फेरा के किरदार की आत्मा है त्याग। उसने अपने परिवार के लिए, अपनी आजादी के लिए और अंत में पृथ्वी के लिए अपनी जान तक का त्याग कर दिया।
और हर त्याग ने उसे मजबूत बनाया।
अंत में यह उपन्यास सिर्फ एक परिकथा का नया रूप नहीं है,
ये गहरे सदमों से उभरने और अपनी असली कीमत पहचानने की एक बहुत ही सशक्त कहानी है।
और यह हमें सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ जीवित रहने के संघर्ष में नहीं, बल्कि प्यार और आज़ादी के लिए लड़ने के साहस में है,
भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्त्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।